लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर कलीसिया में लोकधर्मी विश्वासियों के मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बपतिस्मा संस्कार से पोषित होकर लोकधर्मी विश्वासी, विशेष रूप से महिलाएं, कलीसिया के अंतर्गत जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकाधिक भाग ले सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रैटेली तुत्ती, हम सभी भाई बहने हैं की शुरुआत की है। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनः जन्म दें। हम सभी नर नारी स्वरूप भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता है। हमें एक समुदाय की जरूरत है। एक साथ सपने देखना कितना महत्वपूर्ण है। केवल अपने में हम मृग तृष्णा को देखने की जोखिम उठाते हैं। सपने एक साथ मिलकर साकार किए जाते हैं। हम एक मानव परिवार के रूप सपने देखें, एक दूसरे के संग अपने जीवन को साझा करें जो पृथ्वी रूपी सामान्य घर में निवास करते हैं। हम अपने विश्वास और अपनी आवाज के द्वारा एक दूसरे को धनी बनाएं, क्योंकि हम सभी भाई बहने हैं। श्रोताओं, फ्रैटेली तुत्ती का प्रथम अध्याय बंद विश्व के ऊपर काले बादल है, जिसकी शुरुआत करते हुए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि बिना किसी संपूर्ण विश्लेषण का दावा किए या रोजमर्रे की जिंदगी के अनुभव का अध्ययन किए, मैं वर्तमान दुनिया के कुछ निश्चित प्रचलित मान्यताओं पर विचार करूंगा जो वैश्विक मित्रता के विकास में बाधा डालती है। सालों से ऐसा लगता है कि विश्व ने युद्धों और आपदाओं से अपने लिए एक सीख ली है और इस भांति धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के अखंडताओं की ओर आगे बढ़ा है। उदाहरण स्वरूप, यूरोप में एकता हेतु एक तरह के सपने देखे गए थे, जिसके फलस्वरूप यूरोप अपनी साझा जड़ों को स्वीकारते हुए अपनी समृद्ध विविधता का लुफ्त उठा सके। हम यूरोपीय संघों के संस्थापकों के दृढ़ विश्वास के बारे में सोचें, जिन्होंने इस महाद्वीप के सभी लोगों के बीच एक साथ कार्य करते हुए विभाजन को दूर करने और शांति तथा भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देते हुए भविष्य की कल्पना की। लातिनी अमेरिका में भी एकता को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश की गई और इस संबंध में बहुत से कदम उठाए गए। कुछ देशों और प्रांतों में मेल मिलाप और पुनर्मेल के प्रयास फलप्रद हुए, तो वहीं बहुत से देशों में इसकी प्रतिबद्धता दिखाई दी। इन दिनों में यद्यपि हम इस संदर्भ में एक प्रतिगमन की निशानी पाते हैं, लंबे पुराने युद्ध जो दबे हुए थे पुनः नए सिरे से उभर कर आ रहे हैं, जबकि एक निकटदर्शी उग्रवादी आक्रोश और आक्रमण राष्ट्रवाद के उदाहरण बढ़ रहे हैं। कुछ देशों में राष्ट्रीय एकजुटता के लोकप्रिय विचार, जो विभिन्न आदर्शों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, एक नए तरह के स्वार्थ को जन्म दे रहा है, जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के भेष में सामाजिकता को खत्म करता है। हमें पुनः इस बात की याद दिलाई जाती है कि हर एक नई पीढ़ी को चाहिए कि वह अतीत के अपने लोगों के संघर्ष और पहचानों को नई ऊंचाइयों तक ले चले। हमारे लिए यही एक राह है। अच्छाई, प्रेम में एक संग, न्याय और एकता एक बार हमेशा के लिए प्राप्त नहीं किए जाते हैं। हमें उन्हें अपने दैनिक जीवन में रोज दिन अनुभव करने की जरूरत है। यह हमारे लिए असंभव है कि हम अतीत में हासिल की गई बातों को लेकर अपने में इत्मीनान और मस्त हो जाएं, जबकि हमारे बहुत से भाई बहने परिस्थितियों का सामना करने हेतु हमसे मदद की गुहार कर रहे हों। विश्व के लिए खुला रहना एक वह अभिव्यक्ति है जिसे आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से चुना गया है और अब इसका उपयोग मुख्य रूप से विदेशी हितों को बढ़ावा देना है जो सभी देशों में सहजता से आर्थिक शक्तियों का स्वतंत्रतापूर्ण उपयोग करते हुए निवेश की चाह रखता है। इस संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थानीय संघर्षों और जन सामान्य की भलाई का दुरुपयोग कर एकल सांस्कृतिक मॉडल को थोपने की कोशिश करती है। यह संस्कृति विश्व को जोड़ती है लेकिन इसके द्वारा लोगों और देशों में विभाजन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि समाज का अधिक वैश्विक होना हमें पड़ोसी तो बनाता है लेकिन यह हमें एक दूसरे के लिए भाई बहन नहीं बनाता। इस तरह की भीड़ वाली दुनिया में हम और अधिक अकेले हो जाते जो व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देती और हमारे सामाजिक जीवन के आयाम को कमजोर कर देती है। वास्तव में बहुत सारे बाजार हैं जहां हम व्यक्तियों को केवल उपभोक्ताओं या दर्शक बन खड़े पाते हैं। एक नियम के तहत इस तरह का वैश्विक विकास शक्तिशालियों को और भी अधिक मजबूत बनाता जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यह गरीबों और कमजोरों को और भी कमजोर कर देता जो अपनी पहचान खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे और भी अधिक अति संवेदनशील और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह राजनीतिक जीवन आर्थिक विभाजन और जीत के सिद्धांत के साथ काम करने वाली आर्थिक शक्तियों के सामने तेजी से कमजोर होता जा रहा है। संत पापा कहते हैं कि परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेतना में गिरावट होती जा रही है जो हमें और अधिक तोड़ देती है। एक तरह का विखंडनवाद जो मानव स्वतंत्रता में सभी चीजों को नए सिरे से शुरू करने की बात कहती है, वर्तमान संस्कृति में मुख्य स्थान लेती जा रही है। इसके द्वारा हम समाज में एक असीमित उपभोक्ता और व्यक्तिगत खोखलेपन की अभिव्यक्ति को प्रसारित होता पाते हैं। चिंता की यह विषय वस्तु मुझे युवाओं को कुछ सुझाव देने हेतु प्रेरित करती है। यदि कोई युवाओं को यह कहता है कि वे अपने इतिहास को अनदेखा करें, अपने बड़ों के अनुभवों को खारिज करें, अतीत को छोड़ते हुए अपने भविष्य की ओर निगाहें डालें जो उनके हाथों में है, तो क्या यह उनके लिए सहज नहीं होता कि वे उन्हें केवल अपनी बातों के अनुसार चलने को प्रेरित करते हैं। ऐसा करने के द्वारा वे युवाओं को छिछला, अपनी जड़ों से विखंडित और अविश्वासी बना देते हैं, जिससे वे सहज ही उनकी बातों पर विश्वास करते हुए उनकी योजनाओं के अनुरूप कार्य करें। बहुत से आदर्शों के कार्य करने का तरीका यही है, वे विभिन्नताओं का विनाश करते जिससे वे बिना किसी कठिनाई के उन पर राज कर सकें। यद्यपि ऐसा करने के लिए उन्हें चाहिए कि वे उन युवाओं को पकड़ें जो अपने इतिहास को कोई महत्व नहीं देते हैं, वे जो अपने पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिली आध्यात्मिकता का तिरस्कार करते हैं, जो अपने जीवन में उन सारी बातों से अनभिज्ञ हैं जो उनसे पहले हुई हैं। ये सारी चीजें नए सांस्कृतिक उपनिवेश के रूप हैं। हम यह ना भूलें कि वे लोग जो अपने रीतियों का परित्याग करते हैं, किसी दूसरी संस्कृति को स्वीकार लेते, चाहे वह मोह के कारण हो या घोर हिंसा के कारण, अनुचित लापरवाही या उदासीनता में या किसी अन्य दूसरी बातों में अपने हृदय को दूसरों के द्वारा चोरी होने देते हैं। वे अपनी आध्यात्मिकता की पहचान को केवल नहीं खोते, व रनवे सदैव बने रहने वाली अपनी नैतिकता को भी खो देते हैं और अंत में वे अपनी बौद्धिक आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता को भी लुटा देते हैं। अपनी ऐतिहासिक चेतना तार्किक विचार न्याय की लड़ाई और एकात्मकता की प्रतिक्रिया को कमजोर करने का प्रभावकारी मार्ग अपने अर्थपूर्ण वाक्यों को खाली छोड़ना और उनके साथ हेरा फेरी करना है। वर्तमान परिवेश में कुछ विशेष शब्द जैसे कि लोकतंत्र स्वतंत्रता न्याय और एकता का सही अर्थ क्या है, उनके अर्थ को हम इस तरह तोड़ा मरोड़ा पाते हैं जिससे वे वर्चस्व के उपकरण बन सके। वे हमारे लिए अर्थहीन टैग स्वरूप हैं जिनका उपयोग किसी भी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस आज संध्या रोम के आराचेले स्थित संत मरिया महागिरजा घर में शांति हेतु संत इजिदो समुदाय द्वारा आयोजित 34वीं प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। असीसी के मनोभाव में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रार्थना सभा की विषय वस्तु है, कोई भी अकेला नहीं बच सकता, शांति और भाईचारा। असीसी में होने वाले इस सभा को COVID-19 आपातकाल के कारण रोम के कंपिटोलियो हिल में आयोजित किया गया है। सभा में कुस्तुंतुनिया के प्राधिधर्म अध्यक्ष बर्थोलोमियो प्रथम तथा यहूदी इस्लाम और बौद्ध धर्मों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस अवसर को दो भागों में बांटा गया है। संध्या 4:25 पर आराचेली के संत मरिया महागिरजा घर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। संत पापा फ्रांसिस भी इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होंगे। प्रार्थना सभा के बाद 5:15 कंपिदोलियो के प्रांगण में दूसरा समारोह होगा जिसमें इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तारेल्ला भी भाग लेंगे। समारोह का समापन एक साथ शांति का आह्वान करते हुए किया जाएगा। मानव भाईचारा के लिए गठित उस समिति ने सोमवार को इस बात की घोषणा की कि मानव भाईचारा के लिए 2021 जायद पुरस्कार हेतु नामांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। संत पापा फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अल तायब पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा कि मानव भाईचारा के लिए जायद पुरस्कार एक वार्षिक समारोह बन गया जब अबू धाबी में मानव भाईचारा पर दस्तावेज में हस्ताक्षर की पहली यादगारी मनाई गई थी। एक वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानव भाईचारा पुरस्कार जगत को प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने में खुशी महसूस करेंगे। उन पुरुषों और महिलाओं के सभी भले उदाहरणों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद में जो इस दुनिया में दूसरों की भलाई करने के लिए किए गए कार्यों और बलिदानों के माध्यम से प्यार करते हैं, भले ही वे धर्म या जाति और सांस्कृतिक संबद्धता में भिन्न हों। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसके हर प्रयास को आशीष प्रदान करें जो भला इंसान बनने एवं भाईचारा में आगे बढ़ने में मदद देगा।
उच्च समिति द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी ताकि सफलताओं और मानव प्रगति को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के उत्कृष्ट कार्यों को पहचाना जा सके। पुरस्कार शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की धरोहर की याद दिलाता है। वे संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक एवं अबू धाबी के पूर्व प्रशासक दोनों रहे हैं। वे नम्रता, मानवतावाद और सम्मान के मूल्यों के साथ जिस आदर्श को मनाने की कोशिश की जा रही है वे उसका प्रतीक भी हैं। यह पहला वर्ष है जब मानव भाईचारा हेतु जायद पुरस्कार नामांकन खोला गया है जिसमें सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, शिक्षा जगत और संस्कृति के प्रमुख हस्तियों और उच्च समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया है। उच्च समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति प्रत्याशियों में से 2021 पुरस्कार विजेता का चयन करेगी। 1 दिसंबर को प्रत्याशितों को जमा करने की अंतिम तिथि है और 4 फरवरी 2021 वह तिथि है जिस दिन विजेता या विजेताओं की घोषणा की जाएगी। कुस्तुनतुनिया के प्राधिधर्मदश बर्थोलोमियो प्रथम ने वैटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में सेंट पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र के बारे में कहा कि ख्रिस्ते हमारी दुनिया को एक परिवार के रूप में सपना देखते हैं। उन्होंने कहा, हम सेंट पापा फ्रांसिस के निमंत्रण उदासीनता या मानव द्वेषवाद के त्याग करने पर पूरी तरह सहमत हैं, जो हमारे पारिस्थितिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है, जिसमें एकता का हमारा आत्म केंद्रित रूप शामिल है और एकजुटता मानव परिवार के रूप में हमारी दुनिया का सपना है। संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती पर उनकी क्या राय है पूछे जाने पर बर्थोलोमियो ने कहा, हमारे भाई पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती के बारे जानने से पहले ही हमें पूरा विश्वास था कि यह मनुष्य में उनकी अटिक रुचि, ईश्वर के प्रति प्रेम, सभी के लिए एकात्मकता का प्रदर्शन, परेशान, दबे और जरूरतमंद लोगों एवं इस समय की बड़ी चुनौतियों का सामना करने हेतु ठोस प्रस्ताव, ईसाई परंपरा के अटूट स्रोत से प्रेरित एवं प्यार से भरे उनके दिल से निकलने का दूसरा उदाहरण होगा। सेंट पापा फ्रांसिस ने सोमवार को रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पीटर माउरेर का वैटिकन में स्वागत किया। वैटिकन न्यूज से बातें करते हुए माउरेर ने विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के कार्यों पर प्रकाश डाला, खासकर इस कोरोना वायरस महामारी के बीच जिसने पहले से उपस्थित कई समस्याओं को बल दिया और त्वरित किया है। माउरेर ने रेड क्रॉस और परमधम पीठ के बीच विचारों, मूल्यों एवं आकांक्षाओं के अभिसरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने इंगित किया कि कलीसिया और रेड क्रॉस एक आम दृष्टिकोण साझा करते हैं जिसमें एक ऐसे समाज का दर्शन विकसित हो रहा है जो समावेशी है और जो पुलों का निर्माण करता है। उन्होंने कहा, समाज में विभाजन के परिणाम पीड़ादायक हैं, विशेषकर कमजोर, अप्रवासी, गरीब और युद्ध एवं हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के लिए। 17 अक्टूबर को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हेतु एक मौन यात्रा की गई। ख्रिस्ती पुरोहितों एवं धर्म सामाजिकों के साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। मौन यात्रा के अंत में नखोड़ा मौलाना शरीक कासमी के इमाम ने 83 वर्षीय जेसुइट पुरोहित के प्रति एकात्मकता व्यक्त करते हुए कहा, यदि एक भाई अन्याय का सामना कर रहा है तो अन्य भाई मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। हम सभी का आह्वान करते हैं कि शोषित लोगों के लिए आवाज उठाएं। यदि हम सबकी भलाई चाहते हैं तो हमें सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। सरकार से अपील है कि वे फादर स्टैन स्वामी को रिहा कर दे। इमाम ने कहा कि फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी बिना किसी अपराध की हुई है। हम आग्रह करते हैं कि सरकार उन्हें बिना शर्त रिहा कर दे, अन्यथा देश के सभी अल्पसंख्यक आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।